मैं सभी को बतलाना चाहता हूँ जो छोटे हैं कि जो उनको बतलाया गया है वो उन्हें सुने और उनका आज्ञा करें। मूसा दुनिया के जाने माने महान वक्ता फेरो की पुत्री द्वारा पाला गया था और अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष उसने हम प्रेजेंट थॉमस मंसन जो बतलाया है मंदिरों के विषय में हम बहुत आभारी है और हम जानते हैं कि वह हमारे भविष्यवक्ता है। मैं एक और भविष्यवक्ता के विषय में बतलाना चाहता हूँ जो बहुत बढ़िया प्रोफेट था जो मूसा नाम जिसका नाम मूसा था। वह एक महान भविष्यवक्ता था फेरो की पुत्री द्वारा पाला गया था और अपने जीवन के प्रथम 40 वर्ष उसने इजिप्ट के राज्य घराने में बिताया था। उसने खुद अनुभव किया था उस प्राचीन राज्य की महिमा और शान को। वर्षों बाद एक दूसरे के पहाड़ के ऊपर शक्तिशाली इजिप्ट के चमक और महानता से दूर मूसा परमेश्वर के उपस्थिति में खड़ा हुआ था और उसके सामने इस भेंट के द्वारा परमेश्वर ने मूसा को अपने हाथों की कारीगरी दिखाई, अपने कार्य और महिमा का एक झलक उससे दिखाया। जब दृष्टि समाप्त हुई मूसा धरती पर गिर पड़ा कई घंटों तक। जब अंत में उसे शक्ति मिली उससे कुछ एहसास हुआ जो अपने वर्षों फेरों ने दरबार में उससे कभी नहीं सूझा। उसने कहा वो जानता था कि मनुष्य कभी भी नहीं है, हम अपने अनुमान से कम हैं। जितना ज्यादा हम विश्व के बारे में सीखते हैं उतना ही ज्यादा हम समझते हैं थोड़ा सा भी जो मूसा जानता था। विश्व इतना बड़ा आधुनिक शानदार है। रात की आसमां का नजारा एक सुंदर गवाही है इस सच्चाई का। कुछ बातें हैं जिससे मुझे आश्चर्यचकित कर दिया इस कदर, जैसे अंधेरी रात में समुद्र और जमीन के ऊपर उड़ना और खिड़की से बाहर देखना। सितारों की जांच करने वालों ने विश्व को सितारों की गिनती करने के लिए कोशिश की है। इस खोज प्राचीन भविष्यवक्ता इनोक की घोषणा के सामने है। उसने कहा कि अगर मनुष्य के लिए संभव होता है धरती के तुड़कों को गिनना, ये चाहे इस तरह के सैकड़ों धरतियों शुरुआत नहीं होता परमेश्वर की रचनाओं की गिनती का। जब हम परमेश्वर की सच्चाओं रचनाओं को के बारे में सोचते हैं ये समझना आसान है कि महान राजा बेंजामिन ने लोगों को सलाह दिया था कि वो हमेशा परमेश्वर की महान को और अपनी खुद की तुष्टता को। मगर चाहे मनुष्य भी नहीं है मैं फिर भी आश्चर्य में हूँ और अपने में सोच परमेश्वर की नज़र में आत्माओं के मूल्य महान है। और जब हम विश्व के बड़े आकार को देखते हैं मनुष्य क्या है अगर रचना की महिमा से मिलान किया जाए। परमेश्वर ने खुद कहा है कि हम वो वजह है जो उसने विश्व को रचा। मनुष्य का ये एक खानदान है, परमेश्वर की तुलना में मनुष्य के कुछ भी नहीं, फिर भी परमेश्वर के लिए हम सब कुछ हैं। जब अनंत रचना से तुलना की जाए हम शायद कुछ नहीं देखते। हमारे अंदर अनंत चिंगारी जल रही है, हमारे पास उन्नत जीवन की ना बयान हो पाने वाला वादा है ना खत्म होने वाली दुनिया। हमारे कब्जे में, और ये परमेश्वर की सबसे बड़ी इच्छा है कि हम उसे पा सकें। वो वादा शैतान जानता है कि उसका एक औजार परमेश्वर के बच्चों को धोखा देने का है कि मनुष्य को तसल्ली दिलाओ कि वो खंडित इंसान है। कुछ लोगों के लिए वो उनके घमंडीपन से जीता है। उन्हें अच्छा बोलना और प्रशंसा करने अपने खुद में महात्मा और शक्ति का विश्वास दिखलाता। वो उन्हें बताता है कि वो मामूली नहीं रहे और कि उनकी क्षमता, जमनसी अधिकार या सामूहिक काम वो अपने आसपास की चीजों से बेहतर कर देखते हैं। वो उन्हें समझने में मजबूर करता है कि वो उन्हें किसी के कानून को सुनना नहीं है और किसी की मजबूतों मुसीबतों की परवाह नहीं करना है। अब्राहम लिंकन को एक शायरी पसंद थी जिसका बोल है, और कि मरणशील लोगों की आत्मा घमंडी रहे, एक आराम से उड़ने वाला पत्थर की तरह आसमान में, बिजली की एक चमक मौजों का बिखरना, मनुष्य जीवन से कब्र के आराम में पहुंचता है। यीशु मसीह के शिष्य समझते हैं कि आनंद की तुलना में हमारी उपस्थिति इस मरणशील जीवन में सिर्फ एक छोटे क्षण के लिए है, अनांतरिक और समय में। वो जानते हैं कि एक आसान का सही मूल्य दुनिया के बड़े मूल्य के मिलन से ताल्लुक नहीं रखता। वो जानते हैं कि तुम विश्व के सभी तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं और उससे स्वर्ग में तो एक रोटी भी नहीं मिलेगी। वो जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे वो है जो बच्चे की तरह आज्ञाकारी, विनित, दीन, संशील, प्रेम से पूर्ण परिपूर्ण बनेंगे, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएंगे वो छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ऐसे शिष्य भी समझते हैं कि जब तुम अपने साथ की सेवा करते हो तब तुम अपने परमेश्वर की सेवा करते हो। हमें बुलाया नहीं गया है। शैतान का धोखा देने का एक और तरीका है निराशा। वो कोशिश करता है हमारे दृष्टि को अपने खुद में तृतियों ठिकाना, जब तक कि हम संदेह नहीं करने लगते कि हमें कुछ योग्यता। वो बताता है हमें कि हम बहुत छोटे हैं पहचानने के लिए कि हमें भुला दिया गया है, खास करके परमेश्वर द्वारा। मुझे आपके साथ एक निजी अनुभव बांटने दे जो शायद उन्हें सहायता दे जो मामूली भुलाए हुए अकेले महसूस कर रहे हैं। कई वर्ष पहले मैं यूनाइटेड स्टेट्स हवाई सेना में विमान चालक की प्रशिक्षण लिया। मैं अपने घर से बहुत दूर था। एक जीवन पश्चिम जर्मनी का सैनिक में पैदा हुआ जो पूर्व जर्मनी में बड़ा हुआ और अंग्रेजी भाषा बहुत ठीक से नहीं बोलता था। मुझे अच्छी तरह अपनी परीक्षण स्थित तक ये यात्रा को टेक्सास में था याद। मैं एक हवाई जहाज पर था, एक यात्री के बगैर मैं बैठ था जिसका गुरु दक्षिण था। मुझे उसकी भी बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे अब तक गलत भाषा सिखाया जा रहा था। मैं भयभीत था ये जानकर कि मुझे बेहद मांग की ऊंचे विमान संचालक प्रश्न से मुकाबला करना था जिनकी अंग्रेजी मात्रा भाषा थी। जब मैं हवाई स्थल पहुंचा बिग स्प्रिंग टेक्सास के छोटे शहर में, मैंने अंतिम दिन संसखा को ढूंढा और पाया भी, जिसमें कुछ बेहतर सदस्य थे, बड़े कमरों में मिलते हवाई स्तर पर उसकी। वो सदस्य को एक छोटे सभागार बने रहे थे जो गिरजाघर का टिकाऊ जगह बनाया गया था। उन दिनों में सदस्य ही नए निमंत्रों को बनने को मजबूर हुआ करते थे। दिन प्रतिदिन अपना विमान चलक कर प्रशिक्षण में भाग लेता और ज्यादा पढ़ाई करता, फिर अपना व्यर्थ समय में सभागार को बनाने में बिताता। वहाँ मैंने सीखा कि बहुत समय नीचे कम कदम नहीं पर लकड़ी का एक टुकड़ा है। मैंने नीला मारते समय बच्चों के साथ जरूरी अनुगता बचने वाले करने को सीखा। मैंने इतना समय सभागार पर काम करते हुए बिताया कि शाखा पढ़ना जो हमारे विमान उधरने के लिए सीखते थे ने चिंता जाहिर किया कि शायद मुझे ज्यादा समय पढ़ाई में बिताना चाहिए। मेरे दोस्तों और साथी वेदर विमान चलाकों ने खुद को वेसर के समय के कार्यों जुटाया था। मैंने अपनी भाषा को सीखा और संडे स्कूल में पढ़ाया। उस समय में बिग स्प्रिंग उसके नाम से बचाए एक छोटा मामूली और बेनाम जगह था, और मैं अक्सर वैसा महसूस करता था अपने लिए मामूली, बेनाम और काफ़ी अकेला। फिर भी मैंने कभी एक बार नहीं भूला सोच कि प्रभु ने मुझे बुलाया भूला दिया है या क्या वो मुझे यहाँ पर ढूंढ पाएगा। मैं जानता था स्वर्ग पिता से नहीं जानना चाहते कि थे मैं कहाँ था। विमान चलाक प्रश्न कक्षा में मैं कितना आगे था या गिरजाघर में मेरी नियुक्ति क्या थी, उसके लिए जरूरी था कि मैं अपने हित में सबसे बेहतर था रहा था, कि मेरा दिल उससे प्रेम करता था और कि मैं अपने आसपास लोगों के मदद करना चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैं अपने हद में सबसे बेहतर करूंगा तब ठीक रहेगा। प्रभु परवाह नहीं करता कि हम संघे मरमर के महल में काम करते गुजारे या अस्पताल में। वो जानता है कि हम कहाँ हैं, चाहे कितने विमरता हमारे परिस्थितियाँ हो, वो इस्तेमाल करेंगे अपने तरीके से। परमेश्वर जानता है कि कुछ बहुत महान आत्माएं जो कभी जीवित थे वो थे, जो कभी इतिहास की कहानियों पर नहीं पाए जाएंगे। वो आशीर्वाद भरे विमरता लोगों है उधारकर्ता का उदाहरण। ऐसा एक दंपति था मेरे एक दोस्त के माता पिता, जिन्होंने इस उदाहरण को पेश किया मेरे लिए। पति यूटा के एक लोहे के कारखाने में काम करते थे। जब अन्य कर्मचारियों ने यह देखते वो उन पर हंसते और विश्वास को लड़कारते। जब भी वो लोग ऐसा करते वो उनसे अच्छी तरह से निश्चयपूर्वक बातें करते। वो उनके दूरवर्तन से ना गुस्सा या परेशान होता। वर्षों बाद उनमें से एक छेड़ने वाला बहुत बीमार हो गया और मर गया। गिरजाघर के वो विश्वासी सदस्य के पास मनोरंजन का या धन की पदवी नहीं थी, मगर उसके प्रभाव ने उन सब पर गहरा असर डाला। उन्हें जानते थे। वो एक इंडस्ट्रियल घंटा में मारा गया। एक ही वर्ष के अंदर उसकी विधवा दिमाग की सर्जरी से गुजरी, जिससे वो चल नहीं सकती, मगर लोग उसके साथ समय बिताने पसंद करते हैं क्योंकि वो सुनती है, वो याद रखती है, वो ख्याल रखती है। लिखना नहीं जानती, वो अपने बच्चों और नेतपोते से फोन नंबर याद रखती है। वो प्रेम से जन्मदिन और साल गिरजाघर याद रखती है। जो उनसे भेद करते हैं वो जीवन और खुद से खुद को बारे में बेहतर महसूस करते हैं। वो उनसे प्रेम करते महसूस करते हैं। वो जानते हैं, वो कभी शिकायत नहीं करती। उनके एक दोस्त ने कहा कि ये महिला में से एक है जो यीशु मसीह के प्रेम को जानती है और उनकी तरह रहते हैं। ये दंपति शायद प्रथम कहने वाले होते कि वो दुनिया के लिए बहुमूल्य नहीं है, मगर प्रभु दुनिया से अलग तराजू इस्तेमाल करता है एक आत्मा को वजन तोड़ने के लिए। वो इस विश्वासी दंपति को जानता है, वो उनसे प्रेम करता है और उनके कार्य उनमें मजबूत विश्वास का एक जीवित गवाही है। भाई और बहनों, शायद ये सच है कि मनुष्य कुछ भी नहीं है विश्वास की तुलना में। कभी कभी हम मामूली, बेनाम, अकेला या भुलाए हुए महसूस करते हैं, मगर हमेशा याद रखना, तुम उनके लिए बहुमूल्य हो। अगर तुम्हें इस पर कोई शक हो, तो इन चार दिव्य सिद्धांतों पर गौर करो। पहला, परमेश्वर विनम्रता और आज्ञाकारी से प्रेम करता है, क्योंकि वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। दूसरा, प्रभु अपने सुसमाचार की सच्चाई निर्बल और साधारण के हाथों दुनिया में प्रचार करने के भरोसे में है। उन्होंने दुनिया के निर्बल को चुना, सामने आए और बुलावा और मजबूत कर हराए, और घटे को निर्बल बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। तीसरा, चाहे जहां भी तुम रहो, चाहे तुम्हारे परिस्थिति कितने विनम्र हो, तुम्हारे नौकरी कितनी छोटी हो, तुम्हारे काबिलियत कितने कम हो, चाहे तुम्हारे रूप कितना साधारण हो या गिरजाघर में तुम्हारी नियुक्ति कितनी छोटी देखी जाए, तुम अपने स्वर्ग पिता की नजरों में छुपे नहीं हो। वो तुमसे प्रेम करता है, वो तुम्हारे विनम्रता दिल को जानता है और तुम्हारे प्यार और दया को कार्य को भी। साथ में ये एक आनंद गवाही बनता है तुम्हारे वफादारी और विश्वास का। चौथा और अंतिम, कृपा समझिए कि जो तुम देखते हो, देखोगे और अनुभव करोगे, अभी वो अपना आनंद में भी होगा। तुम अकेलापन, दुख, पीड़ा या निराशा हमेशा नहीं महसूस करोगे। तो हमारे पास परमेश्वर का वादा है कि वो कभी ना हमें छोड़ेगा या त्यागेगा अगर उसने प्रेम करेगा। उस वादा पर आशा और विश्वास करो। अपने स्वर्ग के पिता से प्रेम करो और उनका चेला बनना सीखो वाणी और कर्म में। आश्वस्त करना कि अगर तुम सिर्फ झेलो, उनमें विश्वास करो और आज्ञाओं का पालन करो, करने में विश्वासी रहो, एक दिन तुम अपने आप अनुभव करोगे उन वादाओं को जो देवदूत पॉल को दिया था। वो बातें आने अंत आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित में नहीं चढ़ी, वो ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। भाई और बहनों, विश्व में सबसे शक्तिशाली जीव है तुम्हारे आत्मा का पिता। वो तुम्हें जानता है, वो प्रेम करता है। परमेश्वर तुम्हें सिर्फ कुछ समय के लिए जीवित एक छोटे स्थान पर रहने वाला मनुष्य की तरह नहीं देखता। वो तुम्हें अपने बच्चे की तरह देखता है। वो तुम्हें कुछ बनने के काबिल और किसी खास वजह के लिए बना देखता है। वो तुम्हें बताना चाहता है कि तुम उसके लिए बहुमूल्य हो। हम सब विश्वास करें, भरोसा रखें और अपने जीवन को ऐसा जिए कि हम अपना सच्चा आनंद योग्य को और संभवता को समझें। हम योग्य रखें कि बहुमूल्य आश्चर्य के लिए के पिता हमारे लिए रखा है। मेरा प्रार्थना है उनके पुत्र के नाम से, यीशु मसीह की ही। आमीन।